क्या गांधी साहब समझते हैं कि इस्लाम की रिलीजियस थॉट की रिकंस्ट्रक्शन के हवाले से कलामे पाक के तर्जुमे की जरूरत है, नंबर एक। नंबर दो, कि क्या इस पे कोई काम कर रहा है, क्या गांधी साहब इस पे काम कर रहे हैं? और नंबर तीन यह है कि मिसाल के तौर पर यूरोपीय ममालिक में अगर एक डिक्शनरी भी तरतीब दी जाती है तो उससे एक ग्रोह काम करता है, तो क्या यहाँ ऐसा नहीं हो सकता कि उलमा का ग्रोह जो है वो इस पे काम करे? ग्रोह
जब भी आप रिकंस्ट्रक्शन का काम करेंगे और मजहब के हवाले से करेंगे तो तीनों चीज़ें ज़ेर बहस आएंगी। यानी एक तो बहसियत मजमुई इस्लाम क्या है, ये ज़ेर बहस आएगा। उसमें जो मजहबी ताबीरात मौजूद होंगी उनका जायज़ा लेना पड़ेगा, जो इस्तदलाल पेश किया जा रहा होगा उसको भी देखा जाएगा, और देखने के बाद आप चीज़ों को नए तरीके से सोसाइटी के सामने लाएंगे। अल्लामा इकबाल ने खुद भी ये कोशिश की थी कि वो पहले तीन चार खुतबात में ये बताएं कि मुसलमानों के मजहबी फिक्र को अब नए सिरे से कैसे देखा जाना चाहिए और उसमें क्या बुनियादें होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो इसमें मलहूज रखने की है वो ये है कि जब आप इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे तो इस्लाम की बुनियाद कुरान है, तो कुरान मजीद के तर्जमा और तशरी का काम भी होना चाहिए, और ये तो हर दौर में होता रहना चाहिए क्योंकि ज़ुबान तब्दील हो जाती है, डिक्शन तब्दील हो जाता है। मसलन आप देखिए कि बहुत अच्छा तर्जमा है शाह अब्दुल कादर का अपने ज़माने के लिहाज से, लेकिन आज के लिहाज से वो ज़ुबान अब लोगों के लिए मानूस ज़ुबान नहीं रह गई।
उर्दू में होने के बावजूद
उसकी वजह यह कि ज़ुबान में तब्दीली आती रहती है, उसलूब बयान तब्दील होता है,
मुहावरा बदल गया।
इसी तरह तीसरी चीज़ हदीस है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कुछ भी हमें अहदीस की सूरत में मिला है वो अल्लाह के पैगंबर की तरफ निस्बत की वजह से बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया। यानी जिस हस्ती को हम अल्लाह का पैगंबर मानते हैं उनका अगर कोई कॉल है, उनका अगर कोई फेल है, उन्होंने किसी मौके पर तबसरा किया है, उनसे मुतल्लक कोई बात है, तो वो एक बड़ी गैर मामूली अहमियत की चीज़ बन जाती है, तो उसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो मैं भी अपनी सलाहियत और इस्तेदाद के मुताबिक ये काम कर रहा हूँ। कुरान मजीद का तर्जमा तो मैंने अब शुरू किया हुआ है, उसकी पहली जिल्द इस वक्त मुकम्मल हो गई है, उसमें तर्जमा भी है, तफसीरी हवाशी भी हैं, क्योंकि मेरे जलीलुल कदर उस्ताद ने एक पूरी तफसीर कुरान मजीद की लिख दी थी, लेकिन मेरा अपना एहसास था कि उसमें तर्जुमा नए सिरे से होना चाहिए, तो मैंने वो तर्जुमा करने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। सूरह मायदा तक वो पाया तकमील को पहुंच गया है, उसमें पहली जिल्द मुकम्मल हो गई है, उम्मीद यह है कि वो जल्द शाये भी हो जाएगी। ताहम ये बात उनकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ ऐसी अकेडमीज़ वजूद में नहीं आ सकें जहाँ पर लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। असल में इज्तिमाई जहानत गैर मामूली तरीके से मौसर होती है। आप सोचते हैं और आला से आला लोग भी बैठ के सोच रहे हों तो ये मुमकिन होता है कि किसी खास पहलू पर निगाह ना पड़े। तो अगर आप 10-15 लोग मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें बड़ी परफेक्शन आ जाती है,
और इंस्टीट्यूशन अगर बन जाए तो फिर वो जारी भी रहेगा,
वो जारी भी रहता है। तो ये होना जरूर चाहिए, लेकिन इसके लिए जो असबाब ज़राए दरकार होते हैं वो बदकिस्मती से हमारी कौम फराहम नहीं करती। हमारे यहाँ कुछ काम तो ऐसे समझे जाते हैं कि जिसके लिए लोग कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इस नौइयत के काम के लिए आम तौर पर लोग तैयार नहीं होते। अल्लामा इकबाल के ज़माने में यहाँ रियासतें मौजूद थीं, और रियासतों के अंदर जो लोग हुक्मरान थे उनमें बाज़ ऐसे लोग थे कि जो इल्म की सरपरस्ती करते थे, जैसे निज़ाम था, जैसे रियासत भोपाल थी, तो उनको कुछ तावन इसमें हासिल होने की तवक्को थी, और उन्होंने किया भी उनके साथ तावन। ताहम उसको वो इंस्टीट्यूशनलाइज जिस तरह करना चाहते थे, जैसे कि उन्होंने दारुस्सलाम की बुनियाद रखना चाहिए और उसमें उन्होंने पठानकोट में मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहिब मौदूदी को भी दावत दी, वो जैसे ही कुछ उसकी शुरुआत हुई दुनिया से रुखसत हो गए। बाद में हमारे यहाँ उस काम को उन खतूत पर आगे बढ़ाने के लिए कोई लोग तैयार नहीं हुए। रियासत की सतह पर भी जो इकबाल अकेडमी या इस नौइयत के इदारे बनाए गए उनमें भी इस चीज़ का लिहाज नहीं रखा गया कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर आला दर्जे के अहले इल्म को तवज्जो दिलाई जाए, और हमारे यहाँ आला दर्जे के इदारे इस मकसद के लिए वजूद पजीर हो।